ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सूचना एवं संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि सरकार संचार क्षेत्र की समस्याओं का समग्र समाधान करने के लिए है प्रतिबद्ध। सरकार वालाओं ने सुझाव दिया है कि अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए आगामी मौद्रिक नीति में उन विषयों को शामिल किया जाए जिन्हें बजट में स्थान नहीं मिल सका। एक सप्ताह में 63 लोगों में डेंगू संक्रमण की हुई है पुष्टि। प्रतिदिन वर्षा होने से संक्रमण बढ़ने की आशंका के बीच महामारी एवं संक्रामक रोग नियंत्रण महाशाखा ने सतर्क रहने की है अपील। और हुती विद्रोहियों के हमले में 14 यमनी सैनिकों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सूचना एवं संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि सरकार संचार क्षेत्र की समस्याओं का समाधान केवल आंदोलन या किसी एक मुद्दे पर बहस तक सीमित न रखकर समग्र रूप से करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नेपाल पत्रकार महासंघ से रचनात्मक सुझावों के साथ संवाद में आने का आग्रह किया है। नेपाल पत्रकार महासंघ द्वारा आज ललितपुर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मंत्री तिमल सिन्हा ने कहा कि संविधान द्वारा सुनिश्चित अधिकारों के कार्यान्वयन में कोई बाधा नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया को सवाल उठाना चाहिए, लेकिन वे तथ्य, प्रमाण और नैतिक आधार पर होनी चाहिए। सरकारी विज्ञापनों के दुरुपयोग की जानकारी मिलने के बाद सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संचार क्षेत्र की समस्याएं किसी एक विषय तक सीमित नहीं है। आगामी आर्थिक वर्ष की मौद्रिक नीति को समयानुकूल बनाने तथा बजट में शामिल न हो सके अनेक विषयों को इसमें समाहित करने का सुझाव विभिन्न हितधारकों ने दिया है। प्रतिनिधि सभा की अर्थ समिति की आज हुई बैठक में पूर्व गवर्नरों, बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों और उद्योग व्यवसाय से जुड़े संगठनों के प्रमुखों ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक नीतिगत सुझाव दिए। पूर्व गवर्नर दीपेंद्र बहादुर छेत्री ने कहा कि मौद्रिक नीति ऐसी होनी चाहिए जो देश की कमजोर होती अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करे। पूर्व गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी ने कहा कि मौद्रिक नीति अत्यंत तकनीकी तथा काफी हद तक पूर्वानुमेय होती है, इसलिए इसकी दिशा देश की आर्थिक स्थिति और बाहरी क्षेत्र की परिस्थितियों से तय होती है। पूर्व गवर्नर डॉ चिरंजीवी ने कहा कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना तथा सरकार के आर्थिक विकास के लक्ष्य को सहयोग देना है और इसी अनुरूप इसकी जिम्मेदारियां निभाई जानी चाहिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष अंजन श्रेष्ठ ने कहा कि बजट में कुछ मुद्दों का समाधान किया गया है, लेकिन निजी क्षेत्र की शेष मांगों को मौद्रिक नीति के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने कहा है कि संसद देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कानून बनाएगी। काठमांडू महानगरपालिका 13 स्थित कंकाली माध्यमिक विद्यालय के 43वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कानून ऐसे बनाए जाएंगे जो देश और जनता की आवश्यकताओं को पूरा करें। भूमि मुआवजा विवाद सुलझने के बाद जयनगर बर्दीवास रेल मार्ग के 18 किलोमीटर हिस्से का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक परिवेश पराजुली के अनुसार धनुषा और महोतरी के ट्रैक निर्माण शुरू हो चुका है। निर्माण कंपनी इरकन इंटरनेशनल ने अगले 2 वर्षों के भीतर बर्दीवास तक रेल सेवा शुरू करने के लक्ष्य के साथ काम प्रारंभ कर दिया है। नेपाल भारत द्विपक्षीय सहयोग के तहत बन रही जयनगर बर्दीवास रेल परियोजना से दोनों देशों के बीच आवागमन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ नेपाल के रेल बुनियादी ढांचे के विस्तार में भी योगदान मिलने की उम्मीद है। निर्माणाधीन 70 किलोमीटर लंबे जयनगर बर्दीवास रेल मार्ग में जयनगर कुर्था खंड पर 19 चैत 2078 से नियमित रेल सेवा संचालित हो रही है। बारिश शुरू होने के साथ डेंगू संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका को देखते हुए महामारी एवं संक्रामक रोग नियंत्रण महाशाखा ने सभी से आवश्यक सतर्कता अपनाने की अपील की है। महाशाखा के कीटजन्य रोग शाखा प्रमुख डॉ. गोकर्ण प्रसाद दाहाल ने कहा कि लगातार वर्षा से डेंगू फैलने वाले मच्छरों के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर दहाल ने बताया कि आषाढ़ 9 से 15 गत्ते के बीच में 63 लोगों में डेंगू संक्रमण की पुष्टि हुई है। लगातार बारिश के कारण सड़कों, घरों के आसपास तथा पानी जमा होने वाले गड्ढों में मच्छरों का प्रजनन बढ़ सकता है, जिससे संक्रमण फैलने का जोखिम भी बढ़ेगा। उन्होंने लोगों से घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देने, नियमित सफाई करने और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी है। डॉक्टर दहाल के अनुसार डेंगू संक्रमण का खतरा आषाढ़ से कार्तिक तक बना रहता है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। चितवन के भरतपुर महानगर पालिका 23 स्थित बेलहट्टा में हाथी के हमले में मां और बेटे की मौत हो गई है। जिला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी चंद्रभूषण यादव के अनुसार शनिवार रात घर में सो रहे 25 वर्षीय आशिका बेटे और उनके 4 वर्षीय पुत्र भरत की हाथी के हमले में घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये जानकारी पुलिस ने दी। भारी बारिश के कारण दापचा नदी और रोसी नदी में आए बाढ़ से पुनर्निर्माण हो रहे बीपी राजमार्ग का डायवर्सन बहाने के बाद वाहन आवागमन में अवरूद्ध हुई है। जिला प्रहरी कार्यालय काभरे प्लांचौक के नमोबुद्ध और पनौती क्षेत्र में बारिश के साथ आने वाले संभावित जोखिम के मद्देनजर सवारी आवागमन में बंद किया गया है। डोलपा के जगदुल्लाह नगर पालिका 4 मोरे लेख में आज बोलेरो जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जगदुल्लाह 4 माजगांव से जुमला जा रही करनाली की जीप बोलेरो जीप दोपहर में अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 25 मीटर नीचे गिर गई। जिला प्रहरी कार्यालय डोलपा के सूचना अधिकारी एवं पुलिस निरीक्षक पद्म रावल के अनुसार दुर्घटना में त्रिपुरा सुंदरी नगर पालिका 8 डोलपा निवासी 38 वर्षीय विष्णु बुढ़ा की मौके पर ही मौत हो गई। जीप में चालक सहित 12 लोग सवार थे, जिनमें से 11 घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इसी तरह जगदुल्ला गांव पालिका 5 गैरी गांव में कदवा सहित के आए बाढ़ में पर के स्थानीय 56 वर्षीय आनंदी बिक की मौत हो गई। ये जानकारी पुलिस ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्रिटेन के मैरीटाइम्स ट्रेंड ऑपरेशन एजेंसी ने कहा है कि उसे यमन के हुदैदाह बंदरगाह के पास एक मालवाहक जहाज पर हमले की सूचना मिली है। ब्रिटिश नौसेना से जुड़ी एक संस्था के मुताबिक एक मालवाहक जहाज ने हुदैदाह बंदरगाह के दक्षिण पश्चिम में लगभग 30 समुद्री मील की दूरी पर आपातकालीन संदेश भेजा और बताया कि उस पर अज्ञात समूह ने हमला कर दिया है। संस्था ने कहा कि अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं और जहाजों को सावधानी के साथ यात्रा करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने की चेतावनी दी गई है। इस बीच यमन की सरकार ने कहा है कि हुदैदाह बंदरगाह के दक्षिण में हुती विद्रोहियों के हमले में उसके 14 सैनिक मारे गए हैं। यमनी सरकार से जुड़े एक सैन्य अधिकारी ने एएफपी को बताया कि सरकारी बलों ने शनिवार को हुदैदाह के दक्षिण में स्थित हाइस क्षेत्र में हुती विद्रोहियों के हमले को कई घंटों की लड़ाई के बाद रोक दिया। अधिकारी ने कहा है कि हुती लड़ाके भी मारे गए हैं या घायल हुए हैं, लेकिन सटीक संख्या नहीं दी गई। ये झड़प उस घटना के एक दिन बाद हुई जब ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर हमला करने की धमकी दी थी। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर आरोप लगाया कि वह यमन में एक ईरानी विमान को उतारने से रोकने की कोशिश कर रहा था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना एवं संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि सरकार संचार क्षेत्र की समस्याओं का समग्र समाधान करने के लिए है प्रतिबद्ध। सरकार वालों ने सुझाव दिया है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए आगामी मौद्रिक नीति में उन विषयों को शामिल किया जाए जिन्हें बजट में स्थान नहीं मिल सका है। एक हफ्ता में 63 लोगों में डेंगू संक्रमण की हुई है पुष्टि। प्रतिदिन वर्षा होने से संक्रमण बढ़ने की आशंका के बीच महामारी एवं संक्रामक रोग नियंत्रण महाशाखा ने सतर्क रहने की है अपील। और हुती विद्रोहियों के हमले में 14 यमनी सैनिकों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।